अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, कितने मक्खन देते को कृष्ण का स्वभाव और इनको आप निष्ठा ला रहे हैं। कृष्ण बल्लभा अर्थात दिन रात कृष्ण के साथ में रहने वाली, उनके हृदय की और बाहर की बातें जानने वाली है ये कौन रोगिणी। ये जो बात नपी चुनी हुई थी कहनी, इसलिए उनके हृदय की बात को जानने वाली भीष्म नंदिनी। क्यों भीष्म नंदिनी? भीष्म भी वैसे ही गंभीर वाले हैं, इसलिए रुक्मिणी जी रुक्मिणी जी इनके मृत्यु बच्चों को वो काम नहीं सके। ये कृष्ण इतने निष्ठुर हैं और बचतरी कमजोर की कारण है, इसलिए उत्तर का रुक्मिणी देवी दिन रात कृष्ण के पास में रहती हैं और उनके हृदय की बातें जानती हैं और वृत्ति की बातें जानती हैं। और ये वृत्ति की बातें कैसे जानती हैं? कृष्ण ही उनको बताते हैं, कभी स्वप्न में और कभी प्रत्यक्ष रूप में गोपियों के संबंध में। इसलिए वो बता रही हैं वो माता जी आप उनकी उम्र बड़े को न जान करके अच्छा क्यों उनकी दुख होने का रहे हैं? ये पत्तो हृदय के हैं निष्ठु है, आपको ऐसा रखने का नहीं। मैं जानती हूँ क्यों तो उनसे निकट में भिन्नता करती हूँ। वे कभी जागृत अवस्था में स्वाई गोपियों की माताओं की गलियों की और कथाओं की चर्चा करते हैं, ब्रह्मणि की चर्चा करते हैं और कभी को जाने पर भी चर्चा करते हैं। वो कहते किसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। मैं आपको और इन लोगों को भी प्रकट रूप में सुना रही हूँ, मैंने इनको भी नहीं सुनाया इनको और जो
नहीं किया
यहाँ पर नहीं सुना है। रात्रि काल में जब हमारे आगे पुत्र सो जाते हैं वो बड़ी न जाने कितनी बातें बड़बड़ाते हैं। बड़बड़ाना मतलब समझते हो बोलने लगते हैं, भावावेश में सपने देख रहे हैं और उसमें इतने भावावेश में प्रकृति ऐसा होगा तो कितनी बातें कहते हैं और बड़े स्थिति करते हैं। अरे बड़ी बातियों की मैया नंद बाबा जसोदा मुनियों की तो बात ही क्या है, बड़े मधुर। अरे काली जी श्री संगी पद्मगंधे प्यारी नामों को बच्चे बच्चों को भी नाम रखता है उनको कभी 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 अपने कथाओं को श्री राम भैया को कहा हो जरा कालों में आराम मतमंगल तुम कहाँ हो और मुझे जैसे जिंदगी की बातें करते हैं सपने में भी मुझे जिंदगी की बातें करते हैं और कभी कहते हैं मैया मुझे मक्खन रोटी दो तो मैया मुझे मक्खन और रोटी दो तो छोटा भैया कहती है कि देखो तू मक्खन और रोटी नहीं खाता इसलिए तुम्हारी छोटी मोटी नहीं होती। तुम जब अधिक खाएगा तो तुम्हारी ये मोटी हो जाएगी। तो भैया लोगों के लिए आओ मैं खाऊंगा अभी और जब भी जब भगवान होगा और चोटी भी हमारी मोटी हो जाएगी। कभी कभी बल्कि बजाने का कोर्स करते हैं, बल्कि करते हैं मानो बल्कि बजा रहे हैं पैरों को पैर रखकर के टेढ़े पैरों से और टेढ़ी कमर और टेढ़े
भक्ति पे जाने लगते हैं। भक्ति को आए नहीं कि जो हाथ वैसे ही काम करता है। कभी कभी कहते हैं अरे चंद्रावली तुम्हारा कैसा व्यवहार है, मेरे कपड़ों को पकड़ करके ऐसे खींचते हैं। और कहते हैं चंद्रावली तुम्हारा कैसा व्यवहार है, क्यों मारे हैं ब्रज की बातें स्वप्न में आती है और प्रत्यक्ष वक्त देखते हैं कि चंद्रावली कभी है। और कृष्ण राधा जी के यहाँ से वहां पर पहुंचे हैं और चिन्ह उनके अंगों में है, चंद्रावली कभी है यहाँ पर किसके पता है। और बड़ी गंभीर होकर के खड़ी हो जाते हैं, कृष्ण समझ पाते नहीं है कि ये मान किया है कि नहीं किया है, कितनी गंभीर अरे तुमने मान किया है, मान किसके पर आप यहाँ सिंह वहां पर दुखी रहते हैं वहां पर रहिए, हमको इसमें क्या आपत्ति हो गई, गंभीर मान है कि कर बात। कभी कृष्ण आए बोले राजी के तू कैसी है हमारा प्रदस्त है, तो गुरु कुली कौन चंद्रावली क्या कर रहे हैं, कम से बाहर हे कंस महाराज आपका पुत्र तो है, तो कृष्ण जी हमको मन क्यों था, तो हमको आपने राधा की कहा मैं राधा चतुर्थी की सरकार तुम्हारा यह व्यवहार ऐसा क्यों जब से न बोल रही है न चल रही है न कुछ कर रही है, इस प्रकार से कर भी मान ले सकती है, यह तुम्हारा आचरण कैसा है बोलो तो सही। कभी कभी उनका दूर भाव देकर के मान समझ नहीं पाते, पूछते हैं मधुमंगल से इसके दूर भाव कैसे समझे, वो बड़ा शत्रु है वो कोई ना कोई बहाना निकाल करके और साधना के लिए इस प्रकार से। और कभी कभी क्या करते हैं ऐसे कपड़े खरीद रहते हैं और कभी कभी रोते 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 आंखों से उनका तकिया किस तरह का कुछ कभी कभी बड़े दिन से लगी गए विचार से हे राजे अब क्षमा कर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। इसे कृष्ण कभी गाते हैं ये कृष्ण के द्वारा ही मैं जानती हूँ इतनी कोमल में रहे ब्रजवासियों के प्रति उनकी इतनी प्रीति मैं मानू। और आप कहते हैं कि मेरी इसको प्रकार नहीं अपना भारत शुद्ध हो असलो गीता आपका स्वयं तथा स्वयं जीवन मत जान दुख शोक हार। देखो कभी कभी मृत्यु ज्ञान लेकर शैया से उठते ही समय से उठ करके बड़े आत्मसत रोजन करते तो अपने भी दो तीन तरह के होते हैं, एक तो गंभीर और दूसरा होता है क्या स्वप्न बंद हो गया कि स्वप्न का भी है पूरा सूचा नहीं। उस अवस्था में ऐसे ही कुछ बातें अनाथ प्रवास प्रवास तो वैसे ही कृष्ण दिखाने से उठ करके संघर्ष त्याग करते बड़े आप वृंदावन की वृद्धि गौ की अंगों की व्यवस्था विचार वृंदावन और राधा को याद रहा जाए और बड़े आत्मसत्य और उनकी रोदन की सुनी सुन करके हम जितनी उनकी महतियां हैं रानियां हैं पत्नियां हैं शोक सागर में निपट कोई सांत्वना दे नहीं सकती कैसे उनको स्वस्थ कर हमारे पास जिसका ऐसा बुद्धि बुद्धि नहीं जो थोड़ी देर के लिए होगी। तो आज की तो बात देखो, आज मैंने क्या मैंने स्वप्न में देखा, अभ्यास चिंता की नदी सपन स्वप्न देखी, आज रात में मैंने कैसा उन्होंने और कुछ करके क्रंदन करते करते अपने देश पर बैठ गए हैं और अपने मुख को अपने उत्तरीय से ढककर निश्चित की भांति अभी लेते रो रहे हैं। अभी अब तक उन्होंने हाथ मुंह भी नहीं धोया, करेला भी नहीं किया, दिन काफी चढ़ गया है। इस तरह से रघुवीर रोहिणी मैया को और सब लोगों को बता रहे हैं, ये तो निश्चित अवस्था है। अब इसके बाद में भाई उदासीन है, जो कुछ कहा गोपियों के प्रति आदर भाव से कहा, उनको तापत्नी भाव गोपियों के ऊपर लेने था, प्रति के साथ उन्होंने कहा और उनकी जितनी प्रसन्नता है उस प्रसन्नता के साथ में कहा कि कृष्ण उनको आदर करते हैं, इसलिए उनको मान नहीं हुआ है, क्योंकि इन सब बातों को सुन करके सप्तभामा जी को उनकी इच्छा वो भी हो कृष्णा वालों को छोड़ करके और उनके प्रति इतनी खुशी करते हैं, इसलिए इस भाव को वो सामना करके और सुन करके इच्छा भाव से इस प्रकार से करते हुए कुछ पूर्व प्रकार करते हुए सापत्न भाव के अनुसार में हम सापत्न भाव बने हैं। एक किसी पुरुष को दो पत्नियां हैं, किसने एक को आदर करेंगे तो दूसरी मान कर गए और उसको जरा सम्मान मिले तो ये मान कर वो क्या करती है कि मथुरा कुल में तुम्हारी लाखों जातों की पत्नियां पर दिन भर रात भर यही मनाए करो जीवन भर। तो इस तरह से इच्छा से वो अरे भामिनी भामिनी मैंने यहाँ पर पहन, अरे बहन ये क्या आप प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम उनके लिए स्त्री के लिए करिए, आप क्या ही प्रणाम कर, अरे क्या वो दिन में ज्यादा खबर सोते हुए ही करते हैं ये नहीं, अरे दिन में भी ऐसे ही करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में गोपियों की बड़ाई करते हैं, चिंता करते हैं और वो इतने अभिनिवृत्त हो जाते हैं उस भाव में सदस्य भाव में आ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं दादा कोई नहीं हूं और ये हमारी रानी नहीं है, उसका दादा भाव करके जैसे मानो गोपी जैसी क्या तो समाधि हो और समाधि में हम लोग करते अरे राधे देवता लोगों की जैसी समाधि नहीं, इसलिए यह प्रभु के क्या केवल निद्रा में ही नहीं जागृत अवस्था में भी मन ही मन में वो उन दो गोपियों की गायों की ब्रजवासियों की चंद्रावती और श्रीमती राधिका प्रभृति की बातों को स्मरण करें, निश्चित जैसे ही वो मन भाव आवेश होकर के वो कहते हैं अरे रवि हम लोग तो नाम मात्र की भी भाषा है किंतु इनका हम लोगों के प्रति कहीं भी स्नेह नहीं है, हम तो इनकी दासियों की दासी हुई गोपियों की दासियों की दासियों के प्रति भी तो कृष्ण को इतना प्यार है, हम लोग कहीं भी कोई स्थिति नहीं है, वास्तव में हम लोग बंधुओं की बंधुमंडलों की दासी होने की भी योग्य नहीं है, वो दासियां भी उनकी
पुलिस भी कर जाए क्योंकि जितनी क्रिया है भोगियों की चैनल रस को वो ध्यान कर सकते हैं। तो हम लोग को ऐसे है नहीं, निगम और निरा दो स्थितियां थी। निगम में बाहर से निगम होता है और बाहर की स्मृति होती है, अनुसंधान करता है। और निगम में क्या होता है, निगम में सारे उनके विकास चरित्र का स्मरण उनके हृदय में मानव मिल रहे हैं। इसे दिगम में एक प्रकार का आनंद है। मैंने उसमें बताया सीता जी लंका रावण के लंकापुर में अशोक बालिका देश में बैठी हुई बाहर देश के और छत छत करके वर्षा हो रही है और उसमें बैठी हुई आंख बंद है, सोच रही है, भूल रही थी मैं जनता में तो बात क्या रही है, क्या सोच रही
है।
मेरा जब सुंदर होने का था तो राम बगीचे में मिले, फूल चुनने के लिए आए अपने गुरु जी के लिए पूजा के लिए, और मैं भी देवी की पूजा करने आई थी। दोनों आंखें चार हुई, कितना उल्लास हुआ और मैं तो अपना सब कुछ भूल गई। गोपियों ने मुझे पकड़ करके घर लाया और राम जी क्या करता है, लक्ष्मण जी से बोले भाई मैं बहुत अपवित्र दे रही हूं, मैं दशरथ मंदिर जिसमें मर्यादा का पालन हूं, आज मैंने मर्यादा का भंग कर एक किशोरी लड़की की प्रति हमारी भावना ऐसी क्यों हुई। लक्ष्मण जी ने समझाया मैं जानता हूं आपकी कभी भी मर्यादा हानि नहीं हो सकती, लोग व्यवहार के प्रतिकूल अवसर नहीं सकते, हमको तो ऐसा मालूम है कि ये आपकी पत्नी बनी है मर्यादा नहीं। और थोड़ी देर के बाद में महाराज जनक की प्रतिक्रिया के अनुसार में बड़े बड़े महाराज विराज सब आए और हनुमत उठाना चाह रहे थे उन्हें उठा सके, एक साथ में सहस प्रभु हजारों बड़े बड़े राजा लोग मिल करके उसे नहीं उठा, जिस संतों की तैयारी पाए हम उसको उठा करके अपना यहाँ से लोग सके। इधर उन्होंने प्रतिक्रिया किया था जो इस धनुष को उठाकर प्रश्न क्या कहा करेगा उसके साथ में अपने भी धर्म भागे अपनी बेटी का इतना कोई इंसान और राम सबसे घंटाओं की नाती मृत्यु गति से झुमते हुए आकर के एक सेकंड के अंदर में उस धनुष को उठाया और क्या जब चढ़ाने लगे तो वो टूट गया। इसके बाद में हजारों लाखों राजा राजकुमार आए और मैं तो प्रेमी दत्त होकर के उनके गले में हाथ रखा, वो दृश्य सब आया कैसे दे रहे हैं। गोपियों ने उनके हाथ को पकड़ करके रामचंद्र जी के ये बात शादी हुई जनकपुर में आए। ये सब चीजों का स्मरण करते करते आंखों में आंसू आ रहे, अच्छा वो स्मरण करिए तो आनंद कितना होगा उस समय, किंतु ये है जीरा कबीर में भी एक आनंद है क्योंकि भगवान की लीलाएं चिन्मय होती हैं। चिन्मय होने पर क्या होता है, कभी भी विच्छेद नहीं होता, किंतु फिर भी विच्छेद जैसा लगता है। यही मिलन में ये तिर यही माता का स्वभाव है जो राधिका के अंदर
फिर जो उसकी लोगते सीखते हैं महापुरुष यहाँ पर परिभाषाओं में जो दुख की बातें बताई गई है ये उसी का रूप है। उनको भीतर से कुछ जीवन में भी आनंद है। गोपियां वहां पर श्रीमती राधिका जी पहले जीवन तो करके जीवन में मुश्किल हो गया। वो समझता जिसकी लीलाएं उनको याद रखते रहना बोलना कृष्ण पापों को मनाना सब मान भंजन करना कभी याद। और फिर जब वो टूट जाती है समाधि तो फिर इस तरह का ये हमारे सनातन गोस्वामी जी उनको जीवन और विनय के स्वरूपों को प्रकरण रूप में उपस्थित करते हैं। गोपियों का विवाह कैसा है? साधारण आदमी चर्चा करेगा, वो विचार करेगा इसके दृष्टिकोण से पद्मावती के दृष्टिकोण से और दूसरे गोपियों
नहीं बुलाते हैं
इसको सुन करके सबको समाज में कुछ सोचनी शुरू हुई और सत्य भाव से हुई। अर्थात रुक्मिणी की परंपरा भी है, इसलिए उनको गोपियों के चरणों में श्रद्धा की। वे अपने भावना ले करते किंतु सत्य भावना सदाचार की समझाया है, इसलिए कुछ अपने भाव इसलिए करना चाहिए। और गुरु स्कूल जा पा रही हो बहन, यह अंकित है, ये हम लोग तो नाम मात्र की भाग्या है। असल में हम लोग उन गोपियों की जाति की जाति की जाति भी होना हमारे लिए समझेंगे, देखना उनको बहुत खुशी था। हम लोग तो अंकित स्थिति होता है, इतना सुन करके परिचित निकाल गए और सब बचत को भी गोकुल प्राण अनुभव रोहिणी जनगण सुनाल गौर रूषा महाराज ने कहा। सत्य भावना की बात सुनकर बलदेव जो गोकुल के प्राण से ब्रजवासियों के प्राण से उनके पूरे अनुभव से वे रोहिणी नंदन ज्योति नंदन ने कहा रोहिणी नंदन श्रीमद भगवे बड़े लोग के साथ में कहा कहा कि उनका कुमार मिला है सत्यभामा और रोहिणी जो रोहिणी जी और ये को सुन करके बलदेव जी अपने क्रोध को रोक ना सके और रोक पूर्वक क्योंकि रोहिणी नंदन है ब्रजवासियों के लिए बड़े प्रिय है। ब्रजवासी लोग अपना प्राण समझते हैं, ये भी ब्रजवासी को अपना प्राण है। बलदेव जी यहाँ रहने पर भी अपने को नंदन नंदन ही समझते, उनको भी पिता नहीं समझते, इसलिए लक्ष्मी नंद बाबा मथुरा में कृष्ण और बलदेव की ये प्रतीक्षा कर रहे थे और इन लोगों ने अंश को मारा और मात्र के पश्चात में नंद बाबा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे नगर की बाधा। उस समय में वो जिनको बसदेव देवी और उग्रसेन इत्यादि ने उनको आने नहीं दिया, तू मेरे पुत्र हो, किंतु दूसरे दिन ये दोनों भाई किस तरह से वहां पर आए। उस समय में नंद बाबा कृष्ण को देख करके बोले, क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो? तुम दोनों भाई बसदेव और देवकी के हो, भले ही कर सकता है कि हाँ मैं उनका पुत्र हूँ, किंतु क्या तुम यही समझते हो? तो कृष्ण रोने लगे और पहले ही बलदेव जी ने कहा, आप ही हमारे पिता हैं, पिता वही है जो पालन करता है, जो जन्म करता हमें कोई पिता नहीं होता है, यदि वो हमें पुत्र को कहीं है उसका पालन करना न पड़े उसका त्याग कर, यदि हमारे व्यक्ति वसुदेव जी हमारे पिता है, ठीक है एक हमारे पिता हो गए, तब उन्होंने तो हमारे बचपन से ही त्याग कर दिया, इसलिए मैंने ही आपको पिता के रूप में देखा, यशोदा को मैया के रूप में, रोहिणी को मैया के रूप में देखा और मैं उनको पिता नहीं, और अब पिता का मैं भी को पत्नी के पिता को भी कहते हैं,
जन्मदाता भयोत्रता
और गुरु को भी पिता
कहते
हैं, ये सब पिता है, किंतु वो जन्मदाता ही पिता नहीं है, तो वो उन्होंने हमको त्याग किया बचपन से, इसलिए
जो गंभीर जो परिवार को व्यवस्था करती है।
बड़े लोग से बोले
अखबार
हमारी मंजिला के लिए हमें सर्दी के लिए है। बड़े प्रभु